वैसे जब से स्टूडियो में मैं आया हूँ, स्टूडियो का माहौल काफी सस्पेंसिव हो गया है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जुनैद कौन है, क्या आप लोग जानते हैं कि ये जुनैद कौन है? हाँ, अभी नहीं जानते। तो मैडम, आप लोग जानते हैं जुनैद कौन है? ओके, सो कोई भी नहीं जानता यहाँ पर जुनैद कौन है, और ये एक सस्पेंस बन चुका है पूरे स्टूडियो में कि आखिर जुनैद है कौन। तो चलिए आपको एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे द्वारा लिखी गई है, और इससे आपको पता चलेगा कि आखिर ये जुनैद है कौन। मैं सिद्धार्थ शर्मा ताशी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है ईदी। ईदी अक्सर ईद पे दी जाने वाली एक बख्शीश होती है, जो कि एक गिफ्ट के रूप में बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को देते हैं। देन ईदी को पेश करना चाहूंगा मैं रेडियो उड़ान बियॉन्ड एंड अबव। कैप्टन अभिमन्यु, लेफ्टिनेंट साहब ने आपकी ईद की छुट्टी स्वीकार कर ली है, कहते हुए सब कांस्टेबल अरुण मेरी छुट्टी का स्वीकार पत्र लेकर मेरे कैंप में आ गए। उस समय मैं अपनी जेब से महज 12 आने निकालकर उन्हें ध्यान से देख रहा था। ये वही 12 आने थे जिसमें छुपी थी मेरी बचपन की खुशियां और एक जाना पहचाना प्यार। मैंने फौरन ही सामान पैक कर लिया और बैठ गया पटना की बस में। उन दिनों हमारी बटालियन राजस्थान स्थित लोंगेवाला बॉर्डर पर तैनात थी। मेरे लिए दुश्मन जितना नजदीक था उतनी ही नजदीक थी ईद की तारीख। उस सिक्के के दोनों पहलुओं में मुझे अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। पूरे बटालियन में एक संदेह था कि एक सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद मुझे ईद के दिन ही छुट्टी क्यों चाहिए। सीनियर ऑफिसर होने के कारण कोई भी मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कहते हैं कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, लेकिन खून के रिश्तों से भी ज्यादा अनमोल हो जाते हैं। ठीक वैसा ही रिश्ता था मेरा और रोशन अम्मा का। बात उन दिनों की है जब मेरे पिताजी का तबादला पटना शहर में हुआ। हम लोग पटना शहर के एक नूर सराय नाम के इलाके में रहने लगे। रोशन अम्मा मोहल्ले की सबसे पुरानी महिला हुआ करती थी, या यूं कहे कि नूर सराय को उन्होंने ही बसाया था। उम्र तो कुछ 55 बरस की होगी। जवानी पति के कैंसर के इलाज में बीत गई और बुढ़ापे में मोतियाबिंद के कारण दोनों आंखें खोदी। घर चलाने के लिए पति की पेंशन ही एकमात्र सहारा था जिससे उस अकेली महिला की गुजर बसर हो जाया करती थी। नूर सराय में नुक्कड़ पर वो अपने एक पुश्तैनी मकान में अकेली रहती थी जो लगभग अब तक खंडहर में तब्दील हो चुका था। अम्मा पूरा दिन अकेली खुद से बातें करती रहती, कोई घड़ी दो घड़ी उनके पास बैठ जाता तो उससे बात करती रहती। मेरे माता पिता दोनों सरकारी दफ्तर में कार्यरत थे, इस वजह से स्कूल से आने के बाद मैं घर पर अक्सर अकेला हो जाया करता था। ऐसे में अक्सर अकेले खेलते खेलते मैं रोशन अम्मा के घर चला जाता था। जब भी मैं उनके घर जाता था और उनका दरवाजा खटखटाता था, अम्मा सिर्फ मुझसे एक ही बात पूछती थी, कौन, जुनैद आया है? मैं कहता था, नहीं अम्मा, मैं अभिमन्यु। मैं उनके घर पर ज्यादा से ज्यादा वक्त खेलते हुए गुजारता था। रोशन अम्मा मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाती थी और कई बार तो सुनते सुनते मैं उन्हीं की गोद में सर रखकर सो जाता था। रोशन अम्मा और मैं एक दूसरे के अकेलेपन के साथी थे, मुझसे वो बहुत प्यार करती थी। पर एक बात जो मुझे हमेशा परेशान किया करती थी वो ये थी कि जब भी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती थी, रोशन अम्मा हमेशा एक ही बात पूछती थी, कौन, जुनैद आया है? रोशन अम्मा आखिर जुनैद का नाम क्यों लेती है? कौन है ये जुनैद और रोशन अम्मा का इस जुनैद से क्या रिश्ता है? कुछ ऐसे ही सवाल उस छोटी सी उम्र में मुझे कई बार परेशान करते रहते थे। उधर रोशन अम्मा का प्यार मेरे लिए और मेरा प्यार रोशन अम्मा के दिल में पड़ता ही जा रहा था। ईद के दिन सुबह बिस्तर से उठते ही मैं फौरन अम्मा के घर गया और जाते ही मैंने अम्मा को ईद की मुबारकबाद दी। एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से मुझे बचपन से ही बड़ों का पैर छूना सिखाया गया था। मैंने अम्मा के पैर छू लिए। अम्मा ने अपने कांपते हाथों से अलमारी खोली और मुझे 12 आने निकालकर मेरे हाथों में दे दिए। माँ, ये जुनैद कौन है और अम्मा क्यों बार बार उसका नाम लेती रहती है? मैंने माँ से पूछा। माँ ने कहा, बेटा जुनैद रोशन अम्मा का बेटा था जो भारत पाक युद्ध में सेना में शहीद हो गया था। बेटे की मौत का सदमा न लगे इसलिए नूर सराय के लोगों ने रोशन अम्मा से ये बात छुपा कर रखी है और उनसे कह दिया है कि उनका बेटा ईद के दिन आएगा। तब से बेचारी अम्मा जुनैद की राह देखती रहती है। वक्त बदलता गया और मेरे माता पिता का तबादला पटना शहर से हाजीपुर हो गया, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं रोशन अम्मा के लिए आज भी प्यार और ममत्व इतनी गहरी छाप में छूटा हुआ था कि हाई स्कूल पास करके मैंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ मिलिट्री स्कूल में दाखिला ले लिया और वक्त ने मुझे कब अभिमन्यु से कैप्टन अभिमन्यु बना दिया पता ही नहीं चला। यही सब ख्यालातों को सोचते हुए मुझे नींद लग गई और जैसे ही नींद खुली तो सामने था पटना शहर का बस स्टैंड। बस स्टैंड पे उतरते ही मैंने फौरन टैक्सी ली और चल दिया अपनी मंजिल नूर सराय की तरफ। नूर सराय अब बहुत ही बदल चुका था। कच्चे मकानों की जगह पक्की बिल्डिंगों ने ले ली थी। नहीं बदला था तो सिर्फ नुक्कड़ वाला घर जहाँ रोशन अम्मा रहती है। मैं घर के अंदर पहुंचा, बिस्तर पर लेटी हुई अम्मा को पैर छुए। मैंने अम्मा के पैरों के पास वो 12 आने रख दिए और पैर छूते ही अम्मा को ईद की मुबारकबाद दी। बड़े ही कांपते स्वर में अम्मा ने मुझसे पूछा, कौन, और मैंने कहा, जुनैद। सो अगर आपको ये मेरी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी हो लिसनर, तो मेरी और भी स्टोरी सुनने के लिए बने रहिए रेडियो उड़ान। स्टे क्लासी बियॉन्ड एंड अबव। थैंक यू।